नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की, कहा पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा वे इस वर्ष भारत के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर्ज से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। सुश्री मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वह भारत में अपने साझेदारों के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया।
अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
श्री रूबियो शनिवार से भारत की चार दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल के साथ चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी की बढ़ती गति को दर्शाती है। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। आधिकारिक बयान के अनुसार शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की है। सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर कल आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास है। श्री पर्वतनेनी ने पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने इस वर्ष के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान सैन्य बलों द्वारा की गई सीमा पार सशस्त्र हिंसा के कारण 750 नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाओं को दर्ज किया है। इनमें से अधिकांश हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हुई हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरान के बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकेबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर नए सैन्य हमले टालकर बातचीत का मौका देने की बात कही थी, लेकिन समुद्र में कार्रवाई जारी है। अमरीका का कहना है कि इस नाकेबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 2 मालवाहक जहाजों को कब्जे में ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युगोस्लाविया के विघटन और रवांडा नरसंहार के मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अंतिम कार्यवाही पूरी हो गई है। अंतिम सुनवाई में रवांडा नरसंहार के कथित वित्त पोषक फेलिसियन काबुगा से जुड़ी कार्यवाही औपचारिक रूप से बंद कर दी गई। काबुगा का शनिवार को निधन हो गया था। दोनों न्यायाधिकरणों ने अत्याचार और नरसंहार से जुड़े 155 लोगों को दोषी ठहराया। इन अदालतों ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा और किसानों तथा मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की। कहा, पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, वे इस वर्ष भारत के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।